بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تھوڑی سی اب اس کی مزید وضاحت تفسیر ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا. بسم اللہ کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا تعلق پیدا کیا. کیا آپ کو اس بسم اللہ کے ترجمے اور لفظی وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ قربت محسوس ہوئی؟ اس قربت کو بڑھانے کے لیے مزید باتیں نوٹ کیجئے گا کہ بسم اللہ کیا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ بسم اللہ ایک مسلمان کلچر کا اظہار ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا کیے ہیں، ہر بندہ اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے تو پھر جینے کا سامان جمع ہوتا ہے نا. ایک چیونٹی بھی اپنی کمر پہ چینی کا دانہ لاد کے جاتی ہے، پھر اس کو بیٹھ کے کھاتی ہوگی نا. اسی طرح میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ہمارے مرد کماتے ہیں، عورتیں گھر سجاتی ہیں، کھانے پکاتی ہیں، ہر طرف آپ اور میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضروریات ہیں. اب جب یہ ضروریات انسان حاصل کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اپنے اون پہ یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا. کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے بڑی محنت سے کھانا بنایا، سرو کرنے کے لیے ڈش میں ڈالا، ڈش ہاتھ سے گری اور زمین پہ دو ٹکڑے ہو گئی؟ کدھر گئی آپ کی محنت؟ کدھر گیا یہ سب کچھ؟ تو گویا کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے آپ کی کرائی محنت کو ضائع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کسی کام کو شروع کرنا، نمبر ایک. لکھئے، اب میں پوائنٹس میں وہ دے رہی ہوں، پوائنٹس میں جواب لوں گی بعد میں آپ سے. نمبر ایک، انسان کی بے بسی کا اظہار ہے کہ مالک میں اپنی ساری کوششیں بھی جمع کر لوں تو میں اپنے کام نہیں بنا سکتی. دوسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی، اب تو اپنی مدد لے کر آ جا. پہلے میں کیا تھا؟ عاجزی. دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی مدد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے، اس کو آج ہم مشرکین مکہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی عادت کیا تھی کہ اپنے کاموں کی ابتدا اپنے بتوں کے نام سے کرتے تھے، جیسے بسمی حبل، بسمی لات. کیوں؟ اب یہ بڑی گہری بات ہے جو اب سمجھیں گے آپ سب. وجہ کیا تھی بتوں کے نام سے کسی کام کو شروع کرنے کی؟ کیونکہ ان کی تہذیب، ان کے کلچر کی بنیاد بت پرستی تھی. بات سمجھ گئے؟ جو حبل کو بڑا کہے گا وہ کہے گا بسمی حبل. تو کیا یہ صرف ایک جملہ بسمی حبل؟ نہیں، پیچھے ایک سوچ ہے. اسلام کی تہذیب میں اللہ کا وجود ایک بنیادی مہرے کی حیثیت رکھتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو سب سے پہلا حکم تھا سورۃ علق کی آیت نمبر 1، اقرا بسمی ربی کلذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. گویا کہ اسلام کی پہلی اینٹ میں یہ بات سکھا دی گئی کہ ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ تدریج سکھا رہی ہوں آپ کو. تدریج سے مراد سمجھتے ہیں کہ یہ درجہ بدرجہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہوا. جب اقرا بسمی کی آیتیں نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہو گیا کہ آپ اپنے ہر کام سے پہلے بسمی کلّہ کہنے لگے. صرف لفظ بسمی کلّہ، کیونکہ حکم ہی یہ تھا نا اقرا بسمی ربی کا، ٹھیک ہے، بسمی کلّہ پڑھتے اور لکھتے تھے. پھر اس کے بعد آپ پر باقاعدہ ایک آیت کی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے بھی اور صحابہ کے لیے بھی یہ لازم کر دیا کہ کوئی چھوٹا بڑا کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے. حدیث میں آتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو یعنی بتی بند کرو، لائٹ آف کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھکن لگاؤ، کھانا کھاؤ، پانی پیو، وضو کرو، سواری پہ سوار ہو، اترو، بسم اللہ پڑھتے رہو. بات واضح؟ یعنی یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اور بندے کی بے بسی کو ثابت کرتا ہے. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے آپ کی سوچ دکھتی ہے. دیکھیے دن رات جو لفظ میں اور آپ بولتے اور سنتے رہتے ہیں نا یہ ہماری سوچیں ہیں. آپ فیل کریں گے 10 سے 20 سال کے بیچ میں مسلمانوں کا لائف سٹائل چینج ہو گیا. کسی کو ملتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم, آپ کہتے ہیں ہیلو, پھر ہائے, پھر ہاں, بدلا نا. آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس السلام علیکم کو ہائے کہنے میں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, پر یہ فرق پڑتا ہے جو یہاں بسم اللہ میں سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو پیچھے آپ کا کلچر, آپ کی تہذیب, آپ کے عقائد ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ دوسروں کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور اللہ کے نام السلام کو استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس ہیلو ہائے جو مرضی کہتے رہے ان کی ایک اپنی سوچ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بندے کے عقیدے کا اظہار ہے. کسی بھی کام کی آپ کی میری کوشش ہے, نتائج اللہ کے ذمے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی نیا کلمہ نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ترتیب زمانی کے اعتبار سے دیکھیں نا تو یہ جملہ کس نے بولا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے, سورۃ ہود. اب یہ جب میں بولوں گا سورۃ ہود آیت نمبر, تو وہ اپنی نوٹس کی ٹپ یاد رکھیں, کونے میں لکھ لیجئے ہود اور آیت نمبر 41, بس ہود اور 41. یہ میرا پورا جملہ نہ لکھیں کہ سورۃ ہود میں یہ آیا ہے, نہیں پھر آپ کا ٹائم لے گا اور آپ سارے نوٹس نہیں لے سکیں گے. بس سورۃ ہود آیت 41 ہے. گھر جا کر اس کی جگہ پہ آپ جگہ جو چھوڑ دیں آپ نوٹس لیتے ہوئے, آپ کا یہ ہوم ورک ہے. کل آپ اپنے نوٹس میں دکھائیں ادھر گروپس میں کہ آپ نے گھر میں سے یہ آئے جا کے قرآن پاک سے بس دیکھ کے اس کا ترجمہ خود لکھ لینا ہے. کیا تھا؟ وقالر کبو فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ. کس میں؟ کشتی میں. کتنی پرانی بات ہے. تب حضرت نوح نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا نام لے کر اس میں بیٹھو, کیونکہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے, اور بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم والا. اب آپ دیکھیے کہ شروع میں یہ لفظ بسم اللہ تھا, اس کے بعد سورت نمل پہ چلیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ یمن میں ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کی ملکہ ایک عورت ہے اور اس کی رعایا ابھی تک کفر پہ. حضرت سلیمان نے خط لکھا ملکہ کے نام پر, آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, فکر نہیں کیجئے. سورت نمل کیا ہے؟ 30 ہے, بس نمبر نوٹ کر لیں اس وقت. کیا تھا وہ کلام؟ انہ من سلیمان, بے شک یہ ہے سلیمان کی طرف سے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہاں اب یہ بسم اللہ پوری ہو گئی. کیا؟ کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو گویا کہ پتہ چلا کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے یہ تہذیب سکھائی, یہ طریقہ, یہ مینر سکھایا مسلمانوں کو کہ تمہارے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں پچھلی قوموں کو صرف بسم اللہ کہنے کا حکم تھا, لیکن اب ہماری شریعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لیکن حضرت سلیمان کی آیت بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان کو یہ جملہ پورے کا پورا سکھایا گیا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اب نیکسٹ کوسچن دیکھیے, آپ اس سال تفسیر جو لیں گے نا کوسچن آنسرز کی صورت میں لیں گے. نیکسٹ کوسچن لکھیے کہ بسم اللہ کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ وائے؟ تو سمجھ لیجئے گا, اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے. جب کوئی شخص کام کا آغاز کرتا ہے نا, تو اگر اس کی سوچ سیدھی نہیں ہے نا تو اس کا کام بھی سیدھا نہیں ہوگا. بسم اللہ کہہ کر بندہ اللہ کو یہ دکھاتا ہے کہ اللہ میں اپنی ساری کوششیں کر کے بھی وہ کام نہیں لے سکتا خود سے جو آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی دلیل ہے. مجھے آپ کو اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ساتھی کوآرڈینیٹرز یا جن کو بھی ہم تربیت دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے. ایک صورت ہے آپ کہتے ہیں بچوں کو بسم اللہ پڑھو, پڑھ لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کیوں پڑھی, نہیں پڑھتے بھول گئے, پھر کبھی چڑھنے لگیں گے. نہیں, آپ ہوم ورک لکھیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا آپ کے اور بڑے بھی ہیں, ساتھ بیٹھ کر یہ باتیں کریں. بیٹا ہو آج تمہیں بتاتی ہوں کہ ہم بسم اللہ کیوں کرتے ہیں. نمبر ایک, ہم بے بس ہیں کہ اللہ جی میں اپنی ساری صلاحیتوں اور وسائل کو انجام دینے کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر سکتی. دوسری وجہ کہ آپ میری مدد کیجیے. تیسرا اس کا ایک اور بھی اینگل ہے کہ اللہ کیے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے. جب آپ کوئی کام بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے ہیں तो क्या अपने लफ्जों में आप ये नहीं देख रहे कि अब आपको कोई देख रहा है? बात समझ रहे? क्या अब वो मेरे इन कामों को देखेगा, अच्छे करता हूं कि बुरे करता हूं? मेरा रिश्ता किसी ऐसी जात से जुड़ गया जो हर वक्त मेरी निगरानी करती है, मेरी तन्हाइयां भी उसके सामने खुली हुई हैं, वो तो मेरी नियतों से भी वाकिफ है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, और जिसने मेरी जिंदगी के लिए कुछ असूल मुकर्रर किए हैं उसी का बंदा बन के जीऊंगा तो कामयाब हूं। तो गोया कि आपका ताल्लुक बिल्ला मजबूत करने के लिए आप और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि एक मुख्तसर सा हुक्म देकर अल्लाह ताला ने एक ऐसी तहजीब की पहली ईंट रख दी जिसके नतीजे में एक ऐसी इमारत वजूद में आती है जिसके साए में फिर इंसानियत मीठी नींद सोती है, और ऐसी इकदार, ऐसे रिचुअल सामने आते हैं कि जिसके बाद वाकई महसूस होता है कि मुसलमान वो होते हैं जिनका हर रिश्ता अल्लाह के साथ जुड़ता है। और ये मेरे आपके लिए दिन में 20 बार एक रिमाइंडर भी होता है कि तुम अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह तुम्हारा रब है। फिर आप देखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप इस चीज़ को भी सामने रखते हैं कि अल्लाह ने मुझे बोलने का सलीका दिया। सूरत अर्रहमान आयत नंबर 1 से 4। खुदाए रहमान ने कुरान सिखाया। रहमान का सबसे बड़ा रहम इंसानियत पे क्या है कि उसने इनको कुरान सिखाया, उसको पैदा किया, और अल्लामहुल बयान कि उसने बोलने की ताकत दी। क्या पता चला आपको मुझे कि जब बिस्मिल्लाह से हम अपने कलाम का आगाज करते हैं तो इस बात का इकरार करते हैं कि बोलने की सलाहियत भी तो आपने ही दी है। कभी सोचा आपने मैंने कि अगर हम भां भां करते जैसे भैंस बोलती है, हम टर टर टराते जैसे मेंढक टर्राता है, पॉसिबल था ना? अब देखिए हर जानवर और हशरातुल अर्ज जो भी, उनकी बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग बोलने की तो ये चीज़ें होती हैं। हम कैसे बोलते हैं? मीठे बोल, ऊंचा बोले, सोच से बोले, प्यार से बोले, नरमी से बोले, हमारे कितने तो एंगल हैं। कभी सुर में बोलते हैं, कभी नसर में बोलते हैं, ये किसने सिखा दिया? चलिए आपका टेलीफोन है, उस पर आप घंटी सेट करते हैं, बस वो घंटी चलती है। आप दरवाजा खोलते हैं तो बस एक ही किस्म की चिड़चिड़ाहट है। कितनी बड़ी ये अल्लाह की कुदरत है कि इस गोश के लोथड़े अपनी जुबान को देखे। ये क्या है? इतनी सी है, वो कहते हैं ना है बालिश्त भर की, पर सारी दुनिया में इसने अपनी असरात पैदा किए। मैं ये गोश्त का टुकड़ा कैसे बोला? ये सीडी प्लेयर के अंदर कौन सी जुबान लगी हुई है जो आपको सुनाती है कुरान की तिलावतें? ये टेप रिकॉर्डर पर ये कौन सी रील चल रही है? और अब ये USPs और आपके लिंक्स कहाँ इनकी जुबानें? तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बात का इकरार करते हैं कि नुतुक, नुतुक कहते हैं बोलना, कि अल्लाह नुतुक की ताकत तूने दी है, तो फिर मैं क्यों तेरा नाम ना लूँ? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जब उनसे भी कलाम किया था उस वक़्त भी इसी बात का हुक्म है। किताब है इनकी तौरात की, तो उसके अंदर एक आयत आती है, या उसका एक कह लीजिए कि पैगाम है, कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए क्या आता है कि मैं इनके लिए इन्हें इनके भाइयों में से तेरे जैसा एक नबी पैदा करूंगा, अपना कलाम इनके मुंह में डालूंगा। यानी मूसा को अल्लाह ने खबर दे दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा एक नबी आएगा जो तेरा ही भाई है, और उनके लोगों की मुंह में जुबान आएगी, और मैं उनको वही हुक्म दूंगा जो वो करेंगे, और जिन बातों को वो कहेंगे वो मेरा नाम लेकर कहेंगे, तो मैं इनका हिसाब फिर नहीं लूंगा। चलिए अगला सवाल उठाइए, क्या हर काम से पहले बिस्मिल्लाह करनी है? नहीं, शरीयत के मुताबिक जो काम करते हैं ना उससे पहले बिस्मिल्लाह करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम यब्दा बिस्मिल्लाही फहुवा अक्ता वाबतर। औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हर जायज काम जिसे बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत और बेनतीजा। क्या पता चला? हर जायज काम से पहले बिस्मिल्लाह। अच्छा, नाजायज काम करने से पहले जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो क्या होगा? काम ही नहीं करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के फवायद में एक फायदा कि आप नाजायज काम करने से रुकते हैं। मसलन चलिए, खिलाफ शरीयत क्या है काम? गीबत। तो गीबत करने से पहले आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर आओ तुम्हें बताऊं उसकी क्या आदत है। ये बिस्मिल्लाह एक रोक बन जाएगी, एक रुकावट बन जाएगी आपके उस गीबत करने की। समझ आ गई बात? तो सही काम, शरीयत का काम, उसकी बात कीजिए। गलत काम से रोक लेगी आपको बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह ताला, और अगर बगावत आ जाए तो कोई और बात है। आप देखिए कि बाद दफा लोग शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, फिल्में गाने बजाने के से पहले कुरान की तिलावत चला दें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कानून तोड़ने से पहले कोई तो तिलावत चला दें, ये उनकी बात है। लेकिन ये जो बात है, अब इसके ऊपर आपको सोचने का मौका देती हूँ। ये बचपन से हम सुनते आए हैं, बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह के साथ ये काम किया, तो ये बरकत क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने नोट्स में लिखिए, ये बरकत क्या है? बरकत किसको कहते हैं? थोड़ा सा समझ लें, ये लफ्ज़ कुरान पाक में बहुत दफ़ा आएगा, आगे सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, कि बरकत कहते हैं थोड़े का ज़्यादा हो जाना। अरबी जुबान में किसी जगह ऊंटनी का बैठना और उठ जाना, इसको बरकत कहते हैं। इसकी मिसाल आपको सीरत में मिलती है, हिजरत के मौके पे अबू अय्यूब अल अंसारी के घर के सामने ऊंटनी बैठी फिर उठ गई, तो वो जगह अल्लाह ने चूज कर ली नबी सल्लम के पहले मेजबान के तौर पे। फिर एक और जगह पहले बैठ के उठ चुकी थी, वहां आज क्या है सबको पता है, मस्जिद नबी। तो बरकत क्या होती थी? ऊंटनी के साथ बैठना और उठना, इसमें बढ़ोतरी का लफ्ज है। आप कहते हैं तनख्वाह पहले मियाँ साहब की 5,000 थी, अब माशाल्लाह 25,000 हो गई है, सुनाइए फिर कैसी गुजरती है? कहते हैं कि वो 5,000 में बड़ी बरकत थी, काफी पैसे मैं बचा ही लेती थी, उसमें से कोई मैं 100, 500, 200, 400 बचा लेती थी, लेकिन अब तो 25 आता है, पता ही नहीं चलता किधर गया। ऐसे जुमले आपने बोले सुने होंगे ना, तो 5,000 देखने में थोड़ा, 25,000 ज्यादा है, तो ये 5,000 के अंदर से वो 500 बचना, ये बरकत थी। जिंदगियां लंबी हैं आज, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, बेबरकती है। माल ज्यादा है, घर बड़े हैं, बेबरकती है। अल्लाह सुबहान तआला के साथ जब आप किसी चीज को जोड़ते हैं, वल्लाही मैं पूरे यकीन और शऊर से कहूंगी, माल लगाएं अल्लाह के रास्ते में, बाकी जो थोड़ा है वो भी ज्यादा हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी तो लगा कर देखें। मैं तो दिन रात लोगों को ये बात समझाने की कोशिश में होती हूँ जो कहते हैं वक्त नहीं मिलता, क्या करें? मैं कहती इस वक्त को अल्लाह के रास्ते में लगाएं, जिस तरह माल अल्लाह के रास्ते में लगाने से बढ़ता है ना, इसी तरह वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाने से वक्त में बरकत पड़ती है। आप बिल्कुल अर्ली जवानी में दीन का काम शुरू कर दें, आप कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। लोग कहेंगे अच्छा हम तो सोचते हैं बूढ़े हैं, क्यों? हम तो करते हैं एंड पे जाके काम शुरू। आज भी आप उन लोगों को देखिए जो दीन का काम बिल्कुल इब्तदाई जिंदगी से शुरू करेंगे ना, आपको उनके अंदर एक अजीब जिंदगी दिखेगी, कशिश और ताजगी। तो बरकत के साथ एक चीज है कि जब एक इंसान कोई खाना खाता है ना, तो वो जिस्म का हिस्सा बनती है, आपकी बॉडी में ताकत आती है, खून बनता है, फिर कुव्वत आती है, आप अपने उससे काम कर लेते हैं। बस आप कोई खाना खाते हैं, ज्यादा भी खाया, लेकिन ना खून बना ना ताकत मिली, बल्कि क्या होगा आप जानते हैं कि डायरिया हुआ, जो पेट में विटामिन्स और कुछ ऐसे कुछ सॉल्ट से वो भी निकल गए। पहली सूरत बरकत है, दूसरी सूरत बेबरकती है। बड़े शौर से ये आखिरी जुमले सुनिएगा, जब हम अपनी जिंदगी को बिस्मिल्लाह से जोड़ देते हैं और इसका सबक रोज सुबह उठ के दुआ में हम कहते हैं, रात को सोते हैं क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। सोते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह सारा दिन गुजार के अब बिस्तर पे आई हूं, अगर इसी रात में मेरी जान चली गई तेरे नाम पे जाएगी। सुबह उठे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे जिंदा कर दिया मेरी मौत के बाद। क्या समझ आ गया आपको कि आप और मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला को ये बात साबित कर देते हैं कि जिस चीज में तेरा नाम है उसमें बरकत है। आप और मैं अगर जिंदगी को क्वालिटी लाइफ बनाना चाहते हैं, सूरत नाहल में आप पढ़ेंगे हयातन तैयबा फलनुहयन्नहु हयातन तैयबा, तो आप अपनी जिंदगी को जिंदगी देने वाले के नाम के साथ लगा दें। अल्लाह के कलमे को बुलंद करना हो, अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी हो, नेकियों को फरोग दें, मजलूमों की मदद करें, गरीबों का साथ दें, दुख बांटें, लोगों को फायदा दें, ये इस बात का सबूत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह कहकर बंदा अल्लाह को कहता है अल्लाह मैं अपने लिए इतना सेल्फिश नहीं हूं कि मैं अपनी इबादत के बोझ में तो और आगे बढ़ती जाऊं, लेकिन दूसरों को मैं हकीर से हकीर कर दूं। चलिए यही चीज आपकी मेरी जिंदगी में खुशियां भरेगी। आज इंसानियत के पास सब कुछ है, आज बड़ी बिल्डिंगें तो हैं, लेकिन टेम्पर बड़े शॉर्ट है। बड़े से घर में मियां बीवी रहते हैं तो अजनबी हैं। आज दुनिया के रिसोर्सेस बहुत हैं, वो सच्ची खुशी नहीं है, ये वजह है कि बिस्मिल्ला नहीं है। देखिए इसको इस जुमले से निकाल दें, अब लिखने पढ़ने से निकाल के, अब आप इसको जिससे मैंने आज बात शुरू की थी ना कि ये मुस्लिम तहजीब का इजहार है, आप मैं बिस्मिल्ला जरूर पढ़ेंगे किसी काम से पहले, अगर हमारा दिल उस काम को अल्लाह के लिए करने का होगा। और आज मैंने देखे प्रैक्टिकली भी ये बात भूल गई है, घर में आते हुए घुसते हुए, यहां हम जब आते हैं ना स्कूल में तो अक्सर ही हम सबके हाथों में सामान होता है, मैंने अक्सर लोगों को देखे बातें कर रहे होते हैं उस वक्त भी अंदर आते। आप कभी मेरे साथ आए, आप नोट कीजिएगा, मुझे पहले मैं ये चेक कर रही होती हूँ कि मेरा पाँव कौन सा है, मैंने कभी लेफ्ट फुट नहीं आपके स्कूल में अंदर किया पहले, हमेशा राइट करती हूँ और मैं बिस्मिल्ला पढ़ती हूँ जाते हुए भी आते हुए भी, क्यों? मुझे पता है अगर मैंने बिस्मिल्ला पढ़ी तो आप मेरे लिए ये बरकत वाला सफर होगा, मुझे बीच में कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो बस आगे चलने से पहले तीन मानी लिखिए लफ्ज़ बा के, बिस्मी के मतलब क्या? अगला सवाल है कि चले भाई बिस्मिल्ला कहने में तो ठीक है लेकिन आखिर ये है क्या? तो आप देखिए जो हमने अभी एनालिसिस में देखा ना, बा प्लस इस्म, तो बा जो है ना इसके अरबी जुबान में आपको तो 17 मानी है जिसमें सिर्फ तीन आपको इस वक्त लिखाती हूँ जो बिस्मिल्ला से जुड़े हुए हैं। एक इसका मानी होता है किसी चीज का किसी चीज से मिल जाना, मुसाहिबत कहते हैं इसको, सोहबत लफ्ज सुना वह स्वाद से लिखेंगे, यानी साथ होना, ये अभी हमने पढ़ा भी है ना, बी साथ इस्म, ये वही लफ्ज है जो हमने लिखा है इंग्लिश में विद कहते हैं। दूसरा बा का मानी होता है इस्तेआनत, किसी चीज से मदद चाहना, और तीसरा बा का मानी होता है तबर्रुक, बरकत हासिल करना। अगर आप इन तीनों लफ्जों को साथ रखें तो बिस्मिल्ला पढ़ते हुए हम क्या कहते हैं? मैं ये काम करने लगी हूं अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के नाम की बरकत से, ये जुमला मैं बोलती हूं, लिख लें, इसमें तीनों मानी आ रहे हैं। मैं ये काम करने लगी हूं अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मदद से, अल्लाह के नाम की बरकत से। बात वाज़े? हम बिस्मिल्लाह में अल्लाह को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि ये काम मैं आपके नाम से कर रही हूं, मैं इसका टाइटल आपको देती हूं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, यानी आप ना चाहते तो ये काम नहीं होना था, और ये काम मैं आपकी मदद से कर रही हूं, और इस काम में अगर कोई खैर होगी ना तो ये आपके नाम की बरकत की होगी। और जब आप इस तरीके से ये काम करेंगे तो फायदा कैसे होगा? मसलन चले एक छोटी सी मिसाल देके बात पूरी करती हूँ। खाना खाता कोई, कहता है बिस्मिल्ला, मतलब क्या है? आप लिखें या सुने, गौर करें, महसूस करें, खाना खाने से पहले जब आप बिस्मिल्ला कहते हैं ना तो आप असल में एक पैगाम देने लगते हैं कि अल्लाह मैं आपके नाम के साथ ये खाना खाने लगी हूँ, आपके आपके नाम की मदद के जरिए ये खाना मुझ तक पहुंचा, और इस खाने को बबरकत जो चीज करेगी वो आपका नाम है, यानी मुझे इससे सेहत मिलेगी। कितनों को बात वाजे हुई है? यानी ये है ना खुद कलामियां, बल्कि ये मोहब्बत भरे बातें आप अपने रब से जो करते हैं। तो लिहाजा इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी से शुरू हुआ व दीन आपको मुझे ये सिखा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिंदगी का खुलासा है। आप देखते हैं कि कुरान पाक की सूरतों का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है, ये भी एक बिस्मिल्लाह की खूबी है, सिवाय सूरत तौबा के हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। उसमें क्यों नहीं है? क्योंकि सूरत अनफाल और तौबा का मजमून एक है, और दूसरी बात है सूरत तौबा में एलाने बेजारी है, वहां पनाह खत्म हो रही थी, वहां कुफार की मोहलत खत्म हो रही थी, वो बाकी बातें वहां जाके करेंगे। लेकिन इसके बावजूद सूरत नमल में दो दफा बिस्मिल्लाह, एक तो शुरू में और एक जो अभी हमने पढ़ी इन्नहु मिन सुलेमान, इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कब पढ़नी चाहिए? सूरत के शुरू में जरूर पढ़नी चाहिए। तिलावत शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम कहें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें और चल पड़िए, ठीक है? कुरान पाक बीच में शुरू होता है कहीं से, जैसे आप सूरत बकरा का दूसरा रुकू शुरू करते हैं, वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल आखिर व बि यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तो इससे पहले आप क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वमिनन नासि, यानी इसमें इख्तलाफ है, हम इस इख्तलाफी या कॉन्ट्राडिक्टरी इशू को बहुत बड़ा नहीं कहते, लेकिन जो बात सारी रायों को सामने रखने के बाद बैलेंस दिखती है कि चूंकि सूरत तौबा से पहले नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते ना, ऐसे ही है ना। तो फिर ये कुरान का एक बकायदा हिस्सा है। तो फिर जहां है ऐसा कुरान की तिलावत पढ़ रहे हैं तो शुरू में पढ़ लें, लेकिन वैसे हम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह तो पढ़ते ही हैं। तो बहरहाल ये पढ़ते वक्त आपने मैंने इंशाल्लाह अपने दिल को रखना है, बाकी इसको हम जब हर सूरत के शुरू में पढ़ेंगे बहुत सारी बातें होंगी। मुझे तो बस इस सब को पढ़ने और पढ़ाने के बाद जो फीलिंग मिली है वो ये है कि कुल इन सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी जिंदगी का किबला व काबा मरकज व महवर तेरी जात है। और मुझे इसको पढ़ते हुए पता क्या फील होता है, तवाफ के साथ चक्कर। अल्लाह मेरी जिंदगी तेरे गिर्द घूमती है, और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ या अपने दिल में इसको सोच रही हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई बंदा मोमिन का दिल अल्लाह के हुक्म से ऐसा जुड़ा होता है कि किबला भी तब्दील करना पड़ जाए नमाज की हालत में तो बंदा वो करने को तैयार होता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह से टूटे हुए ताल्लुक जुड़ जाए। ये बहुत टूटे हुए आज। अच्छा आपको पता है लोग पहले अल्लाह को गॉड कहते थे, आपको पता है ना गॉड कहते हैं ना, फिर क्या हुआ ऐसा ऐसा? ओ गॉश, इंग्लिश में अब लोग गॉड को गॉश कहते हैं। सारी निशानियां ही मिटा दो लफ्ज अल्लाह की, ये अच्छा ही नहीं लगता लफ्ज, इससे डिप्रेशन होता है, बोझ होता है। आज इंसानों की जिंदगी से लफ्ज अल्लाह क्या निकला, उसकी बरकत निकल गई। अब इस शऊर के साथ बिस्मिल्लाह की तिलावत सुनते भी हैं और साथ पढ़ें, और अपने दिल को पूछें क्या मुझे बिस्मिल्लाह के बारे में ये बातें सुन सुनाकर अल्लाह से कुर्बत महसूस हुई।
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله. कोई सवाल कोई बात? आपने इन बातों को सुनने के दौरान कुछ महसूस किया कि बस सुना? ये तो नहीं फिक्रमंद थे कि नोट्स ही नहीं लिखे जा रहे, तेज बोल रही हैं, कैसे लिखें? मुझे ऐसे लगता है कि बिस्मिल्लाह को पढ़कर आप अपने आप को 24 घंटे अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। बार दफा ये 114 बार नाजिल हुई, हर सूरत से पहले नाजिल होती। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह मेरे से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिवा किसी को नहीं दी गई। हजरत सुलेमान पे थी, लेकिन जैसे उनको तो उनका खत था ना, वो तो उन्होंने बोला था, समझिएगा, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाह। हजरत सुलेमान मलका सबा को खत लिखते हुए कहते हैं कि ये खत सुलेमान की तरफ से, और अल्लाह वो है और रहमान है, उनका अपने जुमले थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाजिल हुई थी। फिर आपको पता है कि अरबों ने एक मौके पर कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कलाम उतर रहा है ना, इसके अंदर असर बहुत है, दिल बहुत जुड़ जाते हैं। जब आज भी आप कुरान सुनते हैं या उसको समझते हैं तो दिल नहीं करता हिलने को, तो कहते थे ये जादूगर है। तो उन्होंने कोशिश करके, एक शख्स था इब्ने मुकफ़ा उसका नाम था, तो उसको जमा करके बिठाया, चीज़ें दी, कहा कि तुम बैठकर इस कुरान जैसा कलाम लिखो और हम तुम्हारी टेक केयर करते हैं। 6 महीने या जितने महीने तक कोशिश की इन्होंने, उसको खिलाया पिलाया, बाद में आए, खोला कमरा क्या है, कहते हैं कि लिख लिख के कोशिशें की हुई दिख रही थी, सुनाओ भाई क्या कलाम लिखा है। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये क्या हुआ, जिसके खिलाफ कलाम लिखने के लिए तुम्हें हमने स्पॉन्सर किया, तुम उसका आज कलमा पढ़े? कह रहे जब तक से तुमने मुझे इधर रखा है, मैं उस वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बराबर की कोई आयत बनाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं बना सका, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। यानी आप देखिए, मैंने इस तरह के कड़वे जुमले लोगों से सुने हैं, योर गॉड इज सो सेल्फ प्रेजिंग, ये नॉन मुस्लिम कहते हैं जब तबलीग की जाए, क्यों कि हर जगह कहते मेरी तारीफ करो। तो आप जरा जाइए कायनात में घूमे, बादलों को सूरज को देखे, तो किसकी तारीफ करेंगे आप? अल्लाह डिजर्व करता है, यस, उसको ये चीज सजती है। वो अल मुतकब्बिर है, आपको पता, वो असली अल मुतकब्बिर है। मुझे मुतकब्बिर बनने का कोई हक नहीं है क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह कहना पूरी दुनिया पे अल्लाह के नाम को लागू भी करना है। तो आप लोग भी ना अपने अमल में रखे, छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, सीधी तरफ से शुरू करें, वजू करें, यही चीजें फिर माओं से जाती थी पहले बच्चों में। अब माएं थोड़ी सी मसरूफ हो गई तो बेबी सिटर्स तो बिस्मिल्लाह कोई नहीं पढ़ती होंगी, तो ये छोटी छोटी चीजें अंदर जाती हैं बंदे के। अल्लाह ताला हमें शऊर दिलाते हैं कि मुझे याद रखो। आप देखिए, आप अपने प्रोफाइल्स पे तस्वीरें लगाते हैं क्यों? देखेंगे, फोन खोलेंगे तो सामने तस्वीर खुल जाएगी। तो अल्लाह की वजूद तो हमारे साथ है, लेकिन अल्लाह को हम देख तो नहीं सकते, तो उसका नाम हर जगह लेना उसके वजूद का एहसास दिलाते हैं। मैंने भी कहा अपने लेक्चर में कि बाज दफा हमारे बच्चे इसलिए रोते हैं कि हमने भी अपने माँ बाप को तंग किया होता है, तो इनका सवाल ऑपोजिट है कि बाज दफा हमने नहीं तंग किया होता, फिर हमारे बच्चे की रोते, हमने कहीं ना कहीं और कोई मस्ती की होगी, और कुछ भी नहीं है तो अल्लाह हमारे दर्जे बुलंद करता है, कोई अल्लाह ताला हमारे और गुनाह रेज कर देता है उसके बदले में। ठीक है,
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم